आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा इंतखाबात के पहले दो मरहलों की तकमील के बाद सियासी जमातों की तवज्जो बाकी मरहलों पर मरकूज। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद जारी। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए चुनाव मुहिम में तेजी। उम्मीदवार लोगों को अपनी ओर रागिब करने की कोशिशों में मसरूफ। वादी में एनसीसी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का कश्मीर का दौरा। और बांग्लादेश में शदीद गर्मी से आम जिंदगी मफलूज, 12 अफराद अजान। अब खबरें तफसील के साथ। दूसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात के इख्तिताम के साथ ही आम चुनाव के लिए 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वोटिंग अमल मुकम्मल हो गई है। दूसरे मरहले की पोलिंग में तकरीबन 61% वोटिंग दर्ज की गई। इस मरहले में लोकसभा की 88 सीटों पर पोलिंग हुई। 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वोटरों ने अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर वोट डालने के लिए इस जमहूरी अमल में जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। केरला की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, आसाम और बिहार की 5-5, मगरबी बंगाल की 3 निशस्तों पर वोटिंग हुई, जबकि छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू व कश्मीर में 1-1 सीट पर वोट डाले गए। मध्य प्रदेश के बैतूल पार्लिमानी हलके के लिए पोलिंग जो दूसरे मरहले में तय थी, अब बीएसपी उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से तीसरे मरहले में 7 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त हिफाजती इकदाम नाफिज किए गए। राय दहिंदगान के लिए बगैर किसी खौफ और धमकी के वोट डालने के लिए साजगार माहौल बनाया गया। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग की गई। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने खासतौर पर कमजोर और कबायली तबकों, बुजुर्गों और पहली बार वोट डालने वालों, खवातीन और ख्वाजा सराओं के लिए वोट डालने के लिए ठोस कोशिशें की हैं ताकि उन्हें इस अमल के दौरान किसी कोफ्त का सामना न करना पड़े। मुल्क में लोकसभा चुनाव के 2 कामयाब मरहलों के बाद तमाम सियासी पार्टियां तीसरे मरहले की चुनाव मुहिम में जुट गई हैं। कौमी और इलाकाई पार्टियों के लीडरान मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां और रोड शोज मुनक्कद करके वोटरों को अपनी ओर रागिब करने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र और गोवा में चुनाव जलसों से खिताब किया। तीसरे मरहले के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव मुहिम 5 मई की शाम को खत्म हो जाएगी। सीनियर बीजेपी लीडर और दाखिला वजीर अमित शाह ने यकीन जाहिर किया है कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की तीसरी मियाद के दौरान हिन्दुस्तान दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में शामिल होगा। आज गुजरात के पोरबंदर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने दफा 370 की मनसोखी, राम मंदिर की तामीर, दहशतगर्दी और नक्सलवाद से कामयाबी के साथ निमटने और अमन कायम करने जैसे तारीखी फैसलों पर वजीर अजम नरेन्द्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया। दूसरी जानब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज वलसाड जिले के धर्मपुर में एक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने गुजशत 10 वर्षों में गरीबी और कबायली लोगों के साथ बकौल उनके हुई नाइंसाफी पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इकतदार में आती है तो वह कबायली आवाम के लिए खसूसी बजट मुख्तस करेगी और गरीबों, किसानों और पसमानदा अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी, जैसा कि कांग्रेस के मंशूर में जमानत दी गई है। दरियसना कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी आवाम के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। वो गुवाहाटी में मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वजीर अजम नरेन्द्र मोदी की तनकीद करते हुए कहा कि वह गुजशत 10 वर्षों के दौरान आवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इधर जम्मू व कश्मीर में दूसरे मरहले के चुनाव के कामयाब इनेकाद के बाद अब तमाम तर तवज्जो तीसरे और चौथे मरहले की तरफ मरकूज हो गई है और चुनाव मुहिम में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान जगह जगह चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज श्रीनगर के खानियार, जड़ीबल और जबन इलाकों में चुनावी सरगर्मियां मुनक्कद हुई, जिस दौरान पार्टी के लीडरान नामजद उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्ला मेहदी के हक में वोट मांग रहे थे। खानियार में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी वर्करों से तलकीन की कि वो पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए ठोस कोशिश करें। वाजह रहे कि पार्लियामानी चुनाव के तीसरे मरहले के तहत 12 रियासतों और यूटीज में 94 पार्लियामानी हलकों में 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि चौथे मरहले के तहत 10 रियासतों और यूटीज में 96 पार्लियामानी हलकों में 13 मई को वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी निशस्त पर 7 मई को वोटिंग हो रही है, जहां 20 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। श्रीनगर पार्लियामानी हलके में पार्लियामानी इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस हलके में कागजात नामजदगी की कल जांच पड़ताल हुई और अब इस हलके के लिए 29 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। हलके में 29 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। एसकेआईसीसी श्रीनगर में आज श्रीनगर पार्लियामानी हलके के जनरल ऑब्जर्वर मुकुल कुमार ने पुलिस ऑब्जर्वर संदीप सिंह चौहान और अखराजात के मुबसिर संबित मिश्रा के हमरा एक मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में श्रीनगर पार्लियामानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मुहियुद्दीन भट्ट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा बशारत कयूम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गांधरबल शामवीर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बड़गाम अक्षय लाबरू और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शुपैया फजलुल हसीब भी मौजूद थे। इस मौके पर मुबसरीन ने असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान और नोडल अफसरान के साथ बातचीत के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अखराजात और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मुनासिबत से तबादले ख्याल किया। मीटिंग में चुनाव अमले की तरबियत समेत लोकसभा के इंतखाबात के इनकाद से मुतलिक मुख्तलिफ अमूर पर भी बातचीत हुई। मीटिंग में रिटर्निंग अफसर ने मुबसरीन को श्रीनगर पार्लियामानी हलके में लोकसभा इंतखाबात के आजादाना, मुनसिफाना और पुरमन इनकाद के लिए की गई तैयारियों से आगाह किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीटिंग को मुतला किया कि हलके में 17,48,091 वोटर दर्ज हैं, जिनमें 8,75,865 मर्द और 8,72,165 खवातीन वोटर शामिल हैं। इसके अलावा हलके में 61 मुखन्नस वोटर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हलके में 2,135 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जो 18 असेंबली हलकों की 1,302 मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हलके में मुख्तलिफ जगहों पर मॉडल पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक ठोस कोशिश के तहत बारामुल्ला पार्लियामानी हलके के लिए चुनाव अखराजात के मुबसिर सीताराम मीणा ने आज डाक बंगले में मुतलक टीमों के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में बारामुल्ला पार्लियामानी हलके के तमाम चारों अजला के मुतलक अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को हलके के रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम अजला के नुमाइंदों ने अखराजात से मुतलक आगाह किया। उन्हें बताया गया कि इंतजामिया की तरफ से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौके दिए जाएं और साथ ही इस बात के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं कि हलके में इंतखाबात आजादाना, मुनसिफाना और बगैर किसी रूकावट के इनकाद को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए मुबसर मौसूफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वजाकरदा रहनुमा खतूत के मुताबिक उम्मीदवारों के कानूनी अखराजात की हदों पर अमल करते हुए अखराजात के दुरुस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। कुलगाम में जिला इलेक्शन ऑफिस की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद हक के रायदेही की अहमियत और जमहूरी अमन में हिस्सा लेने के बारे में बेदारी पैदा करना था। پروگرام کی صدارت ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کلگام اطہر عامر خان نے کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے جمہوری عمل میں شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ انفرادی آوازوں کی اجتماعی طاقت ہے جو حقیقی تبدیلی کا موجب بنتا ہے۔ بعد میں سویپ کے تحت منعقدہ تقریب میں شرکا نے لوک سبھا انتخابات میں پرجوش طریقے سے ووٹ ڈالنے کا عہد کیا۔ نگینی کلچرل فاؤنڈیشن کے اہتمام سے بانڈی پورہ کے چھٹی بانڈے آرگام میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں صوفی شاعر محمد افضل وانی کے شعری مجموعے کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر ایک محفل سماع بھی آراستہ کی گئی۔ شبنم بشیر نے کتاب پر تبصرہ پیش کیا، جبکہ تقریب کی صدارت معروف براڈ کاسٹر شاعر اور قلمکار عبدالاحد فرحاد نے کی۔ ادھر ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کی جانب سے شری بارہمولہ کے ایک اسکول میں آج مرحوم ادیب اور سماجی کارکن غلام الدین گلشن کی یاد میں ادبی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس دو نشستوں پر مبنی تھی۔ پہلی نشست میں مرحوم غلام الدین گلشن کی زندگی اور سماجی و ادبی کارناموں پر ایک مقالہ پیش کیا گیا، جبکہ دوسری نشست میں ایک کثیر اللسان مشاعرہ منعقد ہوا۔ محفل میں شاعروں اور اسکولی بچوں کے علاوہ عام لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ جموں کشمیر اور لداخ این سی سی ڈائریکٹوریٹ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آر کے سچدیوا نے کشمیر کے دورے کے دوران وادی میں این سی سی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ان کے دورے کا مقصد تربیتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے علاوہ گروپ ہیڈ کوارٹرز سری نگر کے تحت دو نئے یونٹس قائم کرنے کی تیاریوں کی نگرانی کرنا اور این سی سی کیڈٹس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ دورے کے پہلے مرحلے میں انہوں نے پہلگام میں قائم جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر سپورٹس اسکول کا دورہ کیا، جہاں انہیں انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل کرنل ہیم چندر سنگھ نے اسکول کی سرگرمیوں اور وہاں دستیاب سہولیات کے بارے میں جانکاری دی۔ کل انہوں نے سری نگر میں این سی سی گروپ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سری نگر میں این سی سی ٹریننگ اکیڈمی کے قیام کے لیے زمین کی حصولیابی کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سائبر پولیس نے اپنی الگ الگ کاروائیوں کے دوران کم سے کم 30 گمشدہ اسمارٹ فونز کو بازیاب کر کے انہیں ان کے اصل مالکان کو واپس سونپ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کشمیر زون کا سائبر پولیس اب گم ہونے والے اسمارٹ فونز سے متعلق عام لوگوں کی طرف سے دی جانے والی درخواستیں قبول کرنے لگا ہے۔ سائبر پولیس کا کہنا ہے کہ فورس کی تکنیکی ٹیم کی انتھک کوششوں کی بدولت الگ الگ ماڈلز کے ایسے 30 اسمارٹ فونز کو بازیاب کر لیا گیا ہے جن کی مالیت لاکھوں روپے میں بتائی جاتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موبائلز کی بازیابی کے بعد انہیں ان کے اصل مالکان کو واپس کیا گیا۔ سائبر پولیس ساتھ ہی عام لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے تکنیکی چیلنجوں، خاص طور پر آن لائن دھوکہ دہی، جعلسازی اور دیگر طرح کے سائبر جرائم سے جڑے معاملات میں بھی لگاتار معاونت فراہم کر رہی ہے۔ ایک پریس بیان میں سائبر پولیس نے کہا ہے کہ وہ عام لوگوں میں موجودہ زمانے کی آن لائن دھاندلیوں کے بارے میں جانکاری دینے کی غرض سے آگاہی کے پروگرام بھی منعقد کرتی رہتی ہے۔ بنگلہ دیش میں گرمی کی موجودہ لہر سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف حصوں میں جاری انتہائی شدید گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں گزشتہ دو روز کے دوران ہیٹ سٹروک سے کم از کم 12 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ کے ایک میچ میں آج سہ پہر دلی کیپٹلز اور ممبئی انڈینز کے درمیان مقابلہ ہوا۔ دلی کیپٹلز نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 257 رن سکور کیے۔ جواب میں ممبئی انڈینز کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 247 رن بنا سکی۔ اس طرح اس میچ میں دلی کیپٹلز نے جیت درج کر لی۔ آئی پی ایل کا دوسرا میچ شام 7:30 بجے شروع ہو گیا ہے۔ اس میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس اور راجستھان رائلز کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔